Dee ready. Where are you now, Dee Dee?
This is Simone Down.
Jai.
Yo, ladies. Whoa. Okay. Did you want to start this with a Tampa hot date? That was a kid song going on, so better you listen. You can't hear me, I don't think.
Okay, ready, ready.
Hey, I'm Hari Bol, 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 আপনারা সকলে বসে পড়েন, বলো ভীমসেন মহারাজ কি? ভীমসেন জি কবে অবসর দিয়া যায়গা? অভি হম ইহা স্থান পর আয়ে হ্যাঁ, মহাপুরে গ্রহণ করেন্গে।
হরে কৃষ্ণ
জ্ঞানাঞ্জন শলাকা মিলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।
গুরু বৈষ্ণব কে অনুগত মে হম লোক আপ জিস স্থান পর আয়ে হ্যায় ইয়ে হ্যায় সমুদ্রগড়। নবদ্বীপ কে 16 কোট ক্ষেত্রফল মে জিতনে ভি ধাম হ্যায় সব মূল রূপ সে ইয়হাঁ উপস্থিত হ্যায়। ইয়ে হ্যায় नवदीप अंतर्गत द्वारकापुरी और गंगा सागर। जैसा कि हम हर साल क्षमा करते हैं कि यहां पर राजा समुद्र सेन रहा करते थे, उनका एक व्रत था कि मैं इस नवदीप धाम को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं निवास करूंगा और भगवान मेरे को यही दर्शन दें। और तो भगवान तो वशीभूत हैं, इसलिए कालक्रम से जब पांडवों का राजसूय यज्ञ होना था तो भीम दिग्विजय करते हुए बंगाल क्षेत्र में आए। अब भीम जब बंगाल क्षेत्र में आए तो समुद्र सेन ने सोचा इससे अच्छा और अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि पांडवों की एक ही गति है, वो है कृष्ण। और किसी प्रकार अगर मैं ऐसी स्थिति पैदा कर दूं कि भीम कृष्ण को पुकारे तो अवश्य ही कृष्ण उनकी रक्षा करने आएंगे और मैं उनके दर्शन कर लूंगा। और इस प्रकार भीम विराट वाहिनी लेकर आए, बहुत बड़ी सेना और राजा समुद्र सेन की छोटी सी सेना, किंतु उन्होंने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आक्रमण करेंगे, हम लोग पराजय को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से युद्ध होने लगा और ऐसी स्थिति आ गई कि भीम ने देखा मैं तो अब गया और तब गया, अगर मैं छोटे से राजा के हाथ में हार गया तो पांडवों की क्या लज्जा रह जाएगी। उन्होंने तुरंत कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण अपने सुंदर रूप वेणुम कमान तमरविंद दलाय साक्षम बरहावताम असितम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने सुंदर रूप में प्रकट हो गए, देखकर राजा के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब छूट गए और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और भीमसेन समझे ओह राजा तो डर गया, राजा तो हार गया, और उन्होंने जो है युद्ध को जीत लिया। हमारे गुरुवर्ग यहाँ पर हरि कथा के वैशिष्ट और चमत्कारिकता को प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर आकर समुद्र सेन और भीम के बीच का उपाख्यान लोगों को श्रवण कराते हैं और खुद पक्ष विपक्ष बनकर हरि कथा की चमत्कारिता को प्रकट करते हैं। किंतु एक बात सत्य है, हर साल भीम पक्ष की ही पराजय होती है। कोर्ट में भी अगर कोई केस 10-20 बार एक बार छब्बीस बार पराजित होता रहे तो अगली बार वो पुनः तर्क और वितर्क के ही पराजित मान लिया जाता है। यद्यपि हम भीम पक्ष में रसानंद प्रभु जी हैं, हमारे बड़े पूज्य हैं, उनको अवसर दिया गया है, किंतु कुछ भी करें अगर पिछले 25 साल से हारते हुए आ रहे हैं तो इस साल भी हार माननी पड़ेगी। और फिर भी अगर वो कुछ ऐसा तर्क रखते हैं तो निर्णय आप लोगों के हाथ में है, पराजय के लिए आप हम सब एक साथ मिलकर भीम पर आक्रमण कर देंगे और कृष्ण को यहाँ उपस्थित कर लेंगे।
हरे कृष्ण ओम ज्ञान की निरंजन ज्ञानांजन चला गया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हम लोग श्रीला गुरु जी का अनुगत्य में श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं यह स्थान कोल द्वीप के अंतर्गत श्री समुद्रगत बांग्ला बोलते हैं कोल द्वीप के अंतर्गत हिंदी बाद में मगर आप बात हिंदी में करेंगे। हरे कृष्ण कोल द्वीप अंतर्गत ये समुद्र घर है। यदि अभिर्ना वृंदावन ये गुप्त वृंदावन इसलिए हमारा आगे श्रवण कर श्री गौरव मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि पार है ब्रज भूमि बाप ये तोड़ मंडल होला अभिर्ण गुप्त वृंदावन अभिर्ण वृंदावन यदि वृंदावन ये नवद्वीप धाम के तिनी चिंतामणि स्वरूप तिनी चिंता करें एखाने बास कर लो बेरतार वृंदावन बास एवं नवद्वीप बास दुई जगह एक संगे बास है। और ये होला ये स्थान होला समुद्र गढ़ अगर यहाँ पर कोई परिक्रमा में आए ये स्थान तो माना गया कुमुद वन और खदरी वन। आप लोग जो वृंदावन में गए उनको पता होगा ये स्थान होला खदरी वन एवं कुमुद वन ये स्थान ने जो ब्रजमंडल जो कुमुद वन और खदरी वन आते वही दो वन परिक्रमा फल यही स्थान एले पा जाए एवं ये स्थान में आने पर हम लोग कोई गंगा सागर जाते हैं हाँ इसलिए गंगा सागर कभी यहाँ पर अगर कोई आ गया उनको गंगा सागर जाने का कोई जरूरत नहीं है। कभी यहाँ आने पर उनको गंगा सागर में जाने का भी फल उनको यही मिल जाएगा। अनेक लोग माने कर गंगा सागर के लिए खूब पुण्य आवे किन्तु यही स्थान नहीं पर गंगा सागर हो जावे एवं तार संगे संगे समुद्र करे आकार तो फल पावे नहीं। अतएव ये स्थान बोलो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जत तीर्थ आते समस्त तीर्थरा श्री गौरचंद्र रे कृपा पवार जने तारा नवद्वीप धाम तारा निवास करते नवद्वीप धाम परिक्रमा कर ले और कुथाए और परिक्रमा कर जेतना और वैष्णव अगर अनुगत कर ले तो बोलो कथा ही नहीं। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते गौर अमार जैसा स्थाने करल भ्रमण रंगे सब स्थान हेरवामी प्रणय भक्त संगे भक्त तेरे अनुगत यदि हमारा नवद्वीप धाम परिक्रमा करी तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मन भ्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे तीर्थ फल साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर पतित तीर्थ करार मूल उद्देश्य हलो गुरु वैष्णव तेरे अनुगत्य भगवत कथा श्रवण करा तीर्थ स्नान कर ले की हवे एक तो समय जन एक तो पाप जावे किंतु हृदय से कखनो वृत्ति जावे ना किंतु गुरु वैष्णव अगर अनुगत्य यदि धाम परिक्रमा करा है हरि कथार द्वारा तार द्वारा मानव परिष्कार हवे एक मान भगवत चरण लगे जावे और सब पाप से निजे थे चले जावे। अतः ताज ने कोई प्रकार नहीं ऐजने अपनारा परम सौभाग्यवान गुरु वैष्णव अगर अनुगत्य अपनारा ये समस्त स्थान दर्शन करते ऐसा हमारे अन्य विषय दिए जाती है हिंदी और बोल दो हाँ हरे कृष्ण। अब लोग श्रवण कर रहे थे भीमसेन और समुद्र स्नान की बात है अब लोग विचार करना प्रभु जी बता रहे थे आप लोगों को पूरे विचार छोड़ दिया है कहते भीमसेन जो यहाँ पर आने का था कारण कहते युधिष्ठिर महाराज का मन में इच्छा है राजस्व यज्ञ करेंगे। राजस्व यज्ञ का उनको मूल उद्देश्य नहीं, राजस्व यज्ञ मतलब होता है अगर कोई राजस्व यज्ञ करे उसका तात्पर्य है विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे राजा उनको अनुगत स्वीकार करें। किंतु युधिष्ठिर महाराज का परम भक्त है इसलिए उनको इस यज्ञ भोग्य से कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति रस में जो गोता लगा रहे हैं उनको यज्ञ का क्या जरूरत है। लेकिन केवल उनका एक ही उद्देश्य था, हम यह चीज को स्थापन करना चाहते हैं अगर जगत में कोई पूज्य हो तो एकमात्र भगवान कृष्ण है। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय यज्ञ में जब नंबर आया किसको सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, वहां पर सहदेव ने कहा पूज्य एकमात्र भगवान कृष्ण है जो गुण हम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम सखात मनुष्य लिंग रूप में ये सखात परम परमेश्वर परात्पर तत्व कृष्ण है, केवल यही एकमात्र पूज्य है। इसलिए केवल कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ के आरंभ किया, लेकिन उसके लिए बहुत सारी पैसा चाहिए और सारे राजा उनको अनुगत स्वीकार करनी चाहिए तभी कर सकते हैं। तब अलग अलग दिशा में उन्होंने अलग अलग भाइयों को छोड़ दिया, कहते पूर्व दिशा का तरफ में उन्होंने भीमसेन को भेजा। जब भीमसेन यहाँ पर आए आप लोगों ने श्रवण किया यहाँ पर समुद्रसेन नामक राजा यहाँ पर निवास करते थे, लेकिन ये कौन है ये चीज को समझो, कहते ये साधारण एक साधक है। इसलिए कहते भक्ति दो तरह का है, कहते एक रागानुगा भक्ति और एक रागात्मिका भक्ति है। कहते भीमसेन कौन है, कहते ये रागात्मिका है, मतलब ये भगवान कृष्ण का नित्य परिकर है, इन द्वारा का कृष्ण के नित्य परिकर भीमसेन है, ये साधारण व्यक्ति नहीं।
इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हरे कृष्ण आवाज आ रही है, हरिओम हरे कृष्ण हरिओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी भीमसेन रागात्मिका भक्ति है, हाँ रागात्मिकता अनुगत में जो भजन कर उससे रागानुगा कहते हैं। भीमसेन भगवान का ये नित्य परिकर है और कृष्ण का हर विषय ये महाभारत युद्ध में केवल अकेला भीम को देकर के संपूर्ण महाभारत युद्ध को उन्होंने संपूर्ण सार्थक कराया। केवल अकेला ही भीम था जो अकेला ही सौ भाइयों को मारा, केवल भीम है हाँ। इसलिए कभी इंद्र नरसिंह देव भी प्रकट होकर के विशासन को उन्होंने बद करवाया। इसलिए ये राजा सूता भक्त है और समुद्र सेन जो राजा थे ये साधारण एकदम साधक है, अभी साधन कर रहे हैं ये चीज को समझो। अभी भगवान कोई दर्शन उनको नहीं मिला है। जब भीम से संपूर्ण देश को जय करते करते यहाँ पर आए ये समुद्र सेन राजा क्या सोच रहे हैं, कहते अभी तो भगवान को दर्शन मेरा मिला नहीं, ये चीज को समझो। अभी तो भगवान दर्शन मिला ही नहीं, उन्होंने देखा ये जो भीम है ये कृष्ण का नित्य परिकर कृष्ण का परम भक्त है, अगर किसी तरह से इसको मैं हरा दूं फल बल तरीका से किसी तरह से अगर हरा दूं तो भगवान भक्त होकर भगवान का प्रतिज्ञा है कौन सा यहाँ प्रतिज्ञा नामे भक्त प्रण गति भगवान स्वयं प्रतिज्ञा भक्त कर करवाया मेरा भक्त का विनाश नहीं भीम चंद्र का कोई विनाश है नहीं। तो पिछले दिन पहनने पर इच्छा करेगा कृष्ण इनका प्रभु कृष्ण को बुलाएंगे कृष्ण को बुलाने पर जब कृष्ण ही आप प्रकट होंगे तो मैं दर्शन कर लूंगा उस प्रतिज्ञा की गई। लेकिन ये कोई शक्ति व्यवस्था कोई तरीका है नहीं। कृष्ण गीता में बताए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, तो तद्भी भी परिपात न परि प्रश्न न सेवया। क्योंकि नियम होता है किसी वैष्णवों के पास में जाकर के तद्भी से परिपात फिर परिप्रश्न फिर सेवा उसको बाद में फिर जाकर के वो हमें दिव्य ज्ञान देंगे। लेकिन इनका क्या तरीका है, भक्तों को मैं परास्त कर दूंगा। इसलिए इसका मतलब है इनका अंदर भक्ति की भावना कुछ है नहीं, किसी भक्तों को परास्त करके जब भगवान उनको रक्षा करने के लिए आएंगे दर्शन कर लूंगा। इसका मतलब है ये चीज का समझो, जैसे कत भगवान का लीला दो तरह का है, एक नित्य और एक नैमित्तिक है। कत जो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु जो अवतीर्ण हुए वो भक्त के पास में एक स्वरूप है, लेकिन जो भक्तों के लिए भगवान अवतीर्ण होने पर उसी समय जो साधारण लोग होते हैं उसी समय उनको दर्शन कर लेते हैं। लेकिन दर्शन प्रेम से पहले दर्शन नहीं है, प्रेम में केवल भगवत दर्शन, उसको पहले कोई भगवत दर्शन नहीं। भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु आए अपना भक्तों के लिए, और अगर उनके भक्तों के लिए आए अगर उसी समय आनुषंग के रूप में जैसे कृष्ण गए मथुरा में वहां पर भक्त लोग दर्शन किया जो व्यक्त था, अनुभव के रूप में अगर कुछ लोग उनको दर्शन कर लिया, लेकिन वो दर्शन को दर्शन शास्त्र में नहीं बताया, क्योंकि दर्शन दर्शन है नहीं, क्योंकि केवल प्रेम से कृष्ण दर्शन है। इसलिए अगर समुद्र सेन राजा हाँ भीमसेन को रक्षा करने के लिए कृष्ण आए और उनको निमित्त बनाकर अगर दर्शन कर लिया तो क्या कौन सा बड़ी बड़ी बात हो गया। लेकिन भगवान तो उनको दर्शन करने के लिए नहीं आए ना, भगवान किस लिए आए थे? भीम को रक्षा करने के लिए। अनुसंग के रूप में दर्शन कर लिया, उसने क्या हो गया? इसलिए इसका कोई महत्व तो नहीं है। इसलिए भीमसेन राजा ये मुख्य तरीका रही है भगवान। हरि बोल। कैसे बड़े बड़े तर्क, जैसे विराट वाहिनी सेना है ऐसे बड़े बड़े तर्क हैं। किंतु हमारे गुरु जी कहते हैं साधक अपनी यात्रा शुरू करता है कामाख्या से, है? अभी काम आ सकता है। संसार में हम लोग अपराध संभव है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर में हर समय रखे बचे रहते हैं। यात्रा कहाँ से प्रारंभ करते हैं? कामाख्या से। किंतु वहां पर दुर्गा देवी हमारे कान में मंत्र दे देती है, कृष्ण मंत्र है, वो अपना प्रभाव इधर दिखा रहा है। और अभी हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हुए कहाँ आ गए? गंगा सागर में। इस गंगा सागर में नहीं, जो समुद्र के किनारे गंगा सागर है वहां पर आकर स्नान तो किया, किंतु वहां लैट्रिन बाथरूम नहीं है, घर नहीं है, गंगा समुद्र का किनारा ही तो है, इसलिए शरीर का मल भी वहीं त्याग कर दिया और उसको पानी वहां से बाहर ले जाता है। इसलिए थोड़ा मल शरीर में कम हुआ, अनर्थ कम हुए, अब आगे बढ़ गए। कहां पहुंच गए? गया धाम में। गया धाम में जाकर हमने कर्मनाशा नदी में स्नान किया, और जो कर्म हर समय प्रतिक्रियात्मक है, चाहे वो पानी पीना भी क्यों ना हो, अगर अपने लिए पानी पियेंगे तो वो भी प्रतिक्रियात्मक है। साधु का प्रसाद समझ के जल ग्रहण करेंगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है। गया में स्नान करके कर्मों को त्याग करके आगे बढ़ गए, वाराणसी धाम में पहुंचे, शिव जी की कृपा ग्रहण की और तुंडु रूप में माधव के दर्शन करने प्रारंभ किए। अभी यात्रा बहुत लंबी है, वहां से आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद पहुंचेंगे, प्रयागराज, वहां पर वेणी माधव हैं, सारा प्रभाव उसमें माधव का दर्शन है, और उसके बाद माधव के घर मथुरा और वृंदावन पहुंचेंगे। किंतु ऐसा लगता है राधानंद प्रभु की गाड़ी अभी गया और बनारस के बीच में अटकी हुई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अभी जो भीम है वो रागात्मिक जन है, वो नित्य परिकर हैं भगवान के, और समुद्र सेन जो है वो अभी साधारण साधक हैं। किंतु गुरु जी भक्तों के वैशिष्ट को स्थापित करते हुए उनमें तारतम्य, कौन तर है और कौन तम है, उसको स्थापित करते हुए कहते हैं कि पहला भक्त है ज्ञानी भक्त। वो कौन है? जैसे प्रहलाद महाराज, उनके नरसिंह देव को भूख प्यास लगती नहीं, क्योंकि भगवान है, शक्ति के मालिक है, समुद्रों को बनाने वाले, नदियों को बनाने वाले, उनको भूख प्यास क्यों लगेगी? दूसरे भक्त हैं उनसे श्रेष्ठ, वो हैं शुद्ध भक्त, वो हैं अम्बरीश महाराज। वो अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके नर्वस उनकी सेवा करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ हैं प्रेमी भक्त, कौन? हनुमान। उनका सर्वस्व ही रामचंद्र हैं, दास के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान के लिए अगर सारे शरीर में सिंदूर भी लगाना पड़े तो वो उनको स्वीकार है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? प्रेमातुर भक्त, प्रेम पर भक्त। प्रेम पर भक्त कौन है? उद्धव आदि। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? प्रेमातुर भक्त। ब्रज के भक्तों को प्रेम आतुर कहा गया है, वो सब समय कृष्ण के लिए आतुर है। उद्धव जी प्रेमातुर भक्त हैं और पांडव आदि प्रेम पर भक्त हैं। किंतु ब्रज ब्रज भक्तों की इन पांचों श्रेणियों में गिनती नहीं की गई, क्योंकि वो उनकी भक्ति क्या है? बहुत ऊंची भक्ति है। और समुद्र सेन ने कौन से कृष्ण के दर्शन किए? ब्रज कृष्ण के, वेणु का नाम था अरविंद। उन्होंने किसके दर्शन किए? गौरांग महाप्रभु के, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप के। उनके सामने जब कृष्ण प्रकट हुए, तुरंत कृष्ण ने क्या किया? अपनी कुमुद वन की लीला प्रकट की। कुमुद वन की लीला में कृष्ण और गोपियां फूल तोड़ रहे हैं और एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, कितनी गोपनीय लीला है। और भीम कौन है? अधिक से अधिक कृष्ण की, द्वारकाधीश कृष्ण की सख्य भाव में सेवा कर सकते हैं, इससे अधिक भीम का अधिकार नहीं है। अधिकार पाने के लिए ऐसा सुना जाता है कि वो ब्रज में श्याम कुंड के तट पर बैठकर
तपस्या करते हैं उनको अधिकार मिला है या नहीं मिला, ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता। इसलिए रसानंद प्रभु का ये कहना कि भीम रागात्मिक जन है इसलिए उनसे श्रेष्ठ है समुद्र सेन से, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि अम्बरीश महाराज जो है प्रहलाद और भीम आदि से भी, भीष्म आदि से भी श्रेष्ठ हैं। दूसरी बात रसानंद प्रभु का कहना है कि युद्ध में पराजय हुई समुद्र सेन की। समुद्र सेन की पराजय नहीं हुई, समुद्र सेन की जीत हुई, क्योंकि उनके हाथ से शस्त्र और अस्त्र राजानुग बख्शी के अंतर्गत छूट गए, जबकि भीम में अभी अभिमान है। महाभारत से पहले कृष्ण ने देखा अर्जुन के साथ कि ये तो आकाश मार्ग से जा रहे हैं कृष्ण और अर्जुन, और नीचे देखा कि एक पूरा बन का बन उजरता हुआ चला जा रहा है। नीचे उतरे देखा कौन है, एक धनुषधारी ने ऐसा बाण चलाया है कि पेड़ों को उखाड़ता हुआ चला जा रहा है। तो कृष्ण उससे पूछे भाई तुम कौन हो, वो बोला मेरा नाम बरपरी है। अरे तुम तो बहुत अच्छे धनुर्धारी हो, जरा एक बताओ तो इस पेड़ के सब पत्तों को छेदन कर सकते हो अपने बाण से। हाँ अवश्य कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा करो छेदन। उसने ऐसा बाण चलाया जो एक एकड़ के सब पत्ते छेदन होने शुरू हो गए, किंतु एक पत्ता नीचे गिरा, उसको कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया, और जो ही वो बाण उनके चरण की तरफ आया, कृष्ण को भी मारने के लिए बाण आया, तो कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन से बरबरी का गला काट दिया, और गला काट के बोले बरबरी बोल तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा था और उस सेना का पक्ष लेता जो पराजय हो रही होती और उसको मैं जिता देता, किंतु अब मेरी ये इच्छा है कि मैं महाभारत के युद्ध का दर्शन करूं और साथ ही साथ आपका दर्शन करूं। तो कृष्ण ने उसको एक पेड़ पर लटका दिया और वो सब युद्ध देखता रहा। युद्ध के अंत में भीम अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध को मैंने जीता। अर्जुन बोला नहीं, युद्ध को मैंने जीता, मैं महारथी हूँ, मैं 1,10,000 सैनिकों से लड़ सकता हूँ। भीम बोला तुम 10,000 सैनिकों से लड़ सकते हो, मैंने तो रथ के रथ हाथी के हाथी उठा के सैनिकों के ऊपर ऐसे मारे कि एक साथ ही 10,000 सैनिक खत्म हो गए, इसलिए इस युद्ध को मैंने जीता। तो कृष्ण बोले तुम दोनों शांत रहो, चलो मेरे साथ, अभी निर्णय हो जाता है कि इस युद्ध को कौन किसने जीता। तो वहां पर आए युद्ध भूमि में, वहां पर बरबरी का सिर टंगा हुआ है, और बरबरी से पूछते हैं बोलो बरबरी बताओ युद्ध भीम ने जीता या अर्जुन ने जीता। बरबरी कहता प्रभु युद्ध को किसी ने नहीं जीता, युद्ध को तो आपने जीता है, मैंने तो सबको आपको मारते हुए देखा है। तो ऐसे भीम जिनको अभी अभिमान है कि मैं युद्ध जीतने वाला हूँ, और एक तरफ वो समुद्र सेन जो रथ की मूर्ति गौरांग सुंदर के दर्शन करके गदगद हो गए हैं, कौन बड़े हैं ये आप लोग ही निर्णय कीजिए। गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो जी गोस्वामी सबसे सुंदर कहते हैं मुक्ता अपि विग्रहम कृत्वा भगवतम सेवंतम। इसका मतलब है मुक्त अवस्था में मेरे नित्य से तरीकर अलग अलग स्वरूप में अलग अलग लोक में अलग अलग रूप में सेवा करते हैं। अब भीम की सेवा को देखो, पहले ये भीम कौन है कदे बाल का अवतार है, और ये भीम से साक्षात ये हनुमान जी राम लीला में हनुमान की सेवा करते हैं, और फिर वही मध्वाचार्य बन करके व्यास देव जी का अनुदत्त में हमारा जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का जो मूल आचार्य रूप में भीमसेन है, मध्वाचार्य जी का रूप धारण कर, और महाप्रभु जब अपना संप्रदाय को चुनने जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर देखा प्रतिमंत्र दंड है, क्योंकि महाप्रभु जी जिस प्रेम को देने के लिए आए थे और उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए आए थे, इसलिए महाप्रभु देख रहे थे कौन सा संप्रदाय में ये चिन्ह है। दशमंत्र दंड है और उनका संप्रदाय में 8 सन्यासियों को देखा, जो 8 सन्यासी भक्ति भाव से भजन करते हुए इसलिए मध्वाचार्य के रूप में भी सेवा करते हैं, और द्वापर युग में तो भीम रूप में सेवा किए ही है, और उन्होंने फिर क्या किया कहते कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में कहते ये कौन है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राय भगवान दुख कहते हैं, कहते भगवानंद तुम पांडु हो, तुम्हारा ये 5 बेटे हैं ये पंच पांडव है, इसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु तो हमारे समुद्र सेन उन्होंने डायरेक्ट दर्शन नहीं किया, उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया है, डायरेक्ट दर्शन नहीं आता है। क्या तो उन्होंने स्वप्न में देखा गौर सुंदर नाचते हुए, तो उन्होंने इतना देखा, लेकिन जो साक्षात राय रामानंद का, राय रामानंद को साक्षात पिता का है, पिता खाती छोटे बहन समझो, बन करके ये भीम रूप आते हैं भवानंद का पेटे बन करके, तो महाप्रभु का परिकर रूप में स्वयं आए हैं। इतने महाप्रभु रस में जो डूबे हैं, गौरव प्रेम रसार नवे चतरंग जगा डूबे, जो राधा माधव अंतरंग, महाप्रभु प्रेम रस में डूबने पर महाप्रभु स्वयं उनको अपना परिकर रूप में स्वीकार किया है। जब महाप्रभु प्रेम रस में डूबे तो उनका काफी क्या रह गया, और देखो उन्होंने जन्म कहां पर लिया, तो राधा कुंड के ऊपर में भिक्ष रूप में जन्म लिया। जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी कुंड खाने के लिए जा रहे थे, ये पंच पांडव उनको स्वप्न देते हैं, तो हम यहाँ पर भिक्ष रूप में जो की प्रेम को पाने के लिए हम यहाँ पर भिक्ष रूप में भजन कर रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं, ये स्वयं उनको बताते हैं। और हमारे समुद्र सेन महाराज कृष्ण को कहां पर दर्शन किया, दर्शन किया कुमुद वन में, उन्होंने स्वप्न में देखा कुमुद वन में राधा कृष्ण को विहार करते हुए, जब कुमुद वन में विहार करते अलग अलग सखियों को लेकर वहां पर रहती है, लेकिन राधा कुंड में दूसरे नहीं, केवल राधा कुंड में केवल कृष्ण का तपस्या गोपियां ही केवल वहां पर निवास करते हैं, वहां पर दूसरे का कोई प्रवेश नहीं है, कोई प्रवेश नहीं कर सकते वहां पर। इसलिए जहां पर भीम से स्वयं राधा कुंड के ऊपर में राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु का परिवर्तन है, ये वैसे ही उनको ब्रज लीला में प्रवेश हो गया। सभी कहने की कौन सा ब्रज लीला में, कहते राधा कुंड में भिक्ष रूप में, और वहां पर राधा रानी की कृपा को पाने के लिए, वहां पर राधा रानी की प्राप्त करने के लिए, मंजरी बनने के लिए वहां तपस्या करते हैं।
ऐसा है इस नवद्वीप में गौर लीला माधुरमयी लीला सप्त में हो रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं नहीं देख सकते, क्योंकि अभी हमारा ब्रज लीला में गौर लीला में अधिकार ही नहीं है। भीम का कौन सी लीला में अधिकार है, द्वारका लीला में, ब्रज लीला के लिए तो वो इच्छा कर रहे हैं, अभी दर्शन थोड़े ही कर रहे हैं, दर्शन हम प्रभु ने शास्त्र ठीक से पढ़े भी नहीं है। अरे वो उड़ोपी में महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु गए और उनसे पूछते हैं, मध्वाचार्य के जो आचार्य हैं उस समय मध्वाचार्य मठ के उड़ोपी मठ के जो आचार्य हैं उनसे पूछते हैं, बोलिए महाशय साध्य क्या है, तो वो कहते हैं साध्य आश्रम धर्म का पालन करते हुए सब कुछ कृष्ण को समर्पण करते हुए मलाश्रम धर्म का पालन करते हुए कृष्ण के चरणों में कर्मार्पण करते हुए और चार प्रकार की मुक्ति को पाना चाहते हैं, जबकि बागोदम कहती है सालों के सामिप्य सारूप शास्त्री दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः। तो महाप्रभु बोले भाई तुम्हारे उत्तर से तो हम संतुष्ट नहीं है, किंतु अवश्य तुमने तभी मंथन गोपाल को विग्रह रूप में स्वीकार किया है, यही बहुत बड़ी तुम लोगों की सेवा है, तुम लोग धन्य हो। इस प्रकार महाप्रभु ने उनको वंचित कर दिया और आगे बढ़ गए उस रूपी में जहाँ पर सत्यवादी संप्रदाय हर समय स्वाहा 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 करता रहता है, हा? और ब्रज भक्ति के बारे में उनको कुछ पता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि आज सन्यासी गोपी भाव में शिक्षित है, किंतु अगर गोपी भाव में शिक्षित है तो क्यों नहीं चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम की चक्रवर्ती ठाकुर पाठ की टीकाओं को पढ़ते हैं, इनको पढ़ने से ब्रज भक्ति में अधिकार उत्पन्न होता है। अतः बड़ा स्पष्ट है कि भीम जो है द्वारकाधीश के परिकर है और समुद्र सेन गौरांग महाप्रभु के श्वेत द्वीप में और कृष्ण के ब्रज में एक साथ ही परिकर है, इससे अधिक प्रमाण की और क्या आवश्यकता है कि स्वयं कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। दशानंद प्रभु का कहना है कि समुद्र सेन ने स्वप्न में देखा कृष्ण को और गौरांग महाप्रभु को, किंतु अश्विनी ठाकुर नवदीप धाम महात्मा ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में कृष्ण चले आए और अपने ब्रज रूप में चले आए, खाली कृष्ण रूप ही नहीं उन्होंने कुमुद वन दिखा दिया, इसको कुमुद वन माना गया है, उन्होंने कुमुदगन दिखा दिया और उसमें कृष्ण की जो गोपनीय लीला होती है उसके भी दर्शन करा दिए। इससे भी कृष्ण का मन नहीं भरा क्योंकि राजा साधारण भक्त नहीं है, राजा राघवनुग भक्त है। तो कृष्ण ने क्या किया, उनको मिलित अपना राधा कृष्ण मिलित तनु गौर महाप्रभु का रूप दिखाया और कहा कि तुम धन्य हो, तुम मेरी लीला के आस्वादन करने के अधिकारी हो। जबकि भीम अभी तक तपस्या ही कर रहे हैं राधा कुंड में, उनको प्रवेश का अधिकार मिला है या नहीं मिला इसका प्रमाण रसानंद प्रभु के पास नहीं है। गौर प्रेमानंद बोलने नहीं दिया मतलब फेल हो गई, मेरा सबसे भी बाकी है अगर इनके पास में मेरा कर्ज का कोई उपाय नहीं, इसलिए फेल
पाऊंगा। यहाँ मंदिर के लिए आप लोग कुछ बनाने देंगे क्योंकि यहाँ ये नया मंदिर निर्माण हो रहा है,
सभी लोग कुछ कुछ बनाने दे दीजिएगा।
जाना है, देर हो रहा है, निकालो भी। अरे
धन्यवाद
धन्यवाद। I tried to find someone to tell you the English, but no one wants to. Essentially, they have a debate here every year about who's a better devotee, Samudra Sen or Bhim. So I think you'll have to control your Parikram book if you want the details.
Okay. So what's next?
Maybe Krishna Kiran you can do. Let me ask him. Can you give the essence of the debate?
I didn't have a translation though.
That's okay, you've heard so many years.
Hare Krishna.
Dhanavad Pranam Prabhu, Jai Mahaprabhu.
Today we have a big debate. Rasananda Prabhu, really strong. He's giving all proof that Bhim is not lesser devotee than Samudra Sen. Here in Samudra Ghar, there was a battle between Bhim Sen and Samudra Sen. And so Rasananda Prabhu was, in essence, actually it's a long, many points. But he was telling that Bhim is Rajatnik Bhakta. And actually he has performed many seva. And before in Ramachandra's time, he's Hanuman, and
Anita.
And in Krishna's time is Bhim, and here in Kali Yuga he's Madhvacharya, and even Mahaprabhu took shelter in his sampradaya. But then taking the part of the side of Samudra Sen is what's his name? Forget his name. One Brahmachari. Anyway, he's telling the Gurudev, this is the punching line that Gurudev is saying, that Bhim is the eternal predicate of Dwarkadish Krishna. And really, if you look at it, the parikars of Mahaprabhu are obviously higher rest. They, Samudra Singh is parikar of Mahaprabhu, that means he's parikar of Radha and Krishna in Braj. And so it obviously is higher than Bhim Singh. Now, it's so nice to hear. Can you still hear me?
Yes, I hear you.
Yeah. Well, I think that's basically the essence of the thing. I didn't want to stop, but Siddha Maharaj had to stop.
Okay. Everybody can download the Navadvip Curriculum book from bhaktibooks.info or bhaktibooks.com. The Navadvip Curriculum book can be found online at purebhakti.com or bhaktibooks.com.
Yes.
And we're waiting for you to send us more books also.
I think I've said everything, huh?
No, there must be something new.
That new Hindi book, and that's Gaur Janadesh Deepika, and there's the Thakur Shloki Bhagavatam and Bhagavat Agama Shimala. They just came out yesterday.
Oh, it's
and they're available now in Navadvip. But they're all in Hindi. There's no English yet.
No, that's okay. So send me those PDFs when you get back to Mathura.
Yeah, okay. I have to ask them. Yes. I'll ask them and I'll send it to you.
Thank you, Prabhu.
Yes.
Jai Prabhu. Jai Gurudev. Jai Prabhupada.
Where do we go next?
It's like going to be about 2 hours or something. An hour,
maybe? Hare Krishna. Dhanyavaad. Hare Krishna. I think it's going to be an hour or more till we go to Vijayanagar. You still want me to call?
I think we'll call it a night.
Yeah.
And then,
yeah.
And then we'll see you for class
Are you sure this
later.
Is the way?
Okay. Okay, Hare Krishna.
Jai. Thank you, Didi.
Hare Krishna. Dhanavad to everybody. Jai Navadvip Dham.
Jai Navadvip. Jai Mahaprabhu. Jai Gurudev. Jai Prabhupada.
Hari Hari Bol.
Hari Bol.